जाइए दीक्षार्थी आप भी है ना अभी जाइए उनको बोला देने सर आपको वो भी जाएंगे
ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिके भूमुख्याद्विरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरान्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यामनोभीष्टम् तं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वापदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगणारघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतम् विनासहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणाललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विश्वपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नमो विश्वपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती निति नामिने श्रीवाशभानवी देवी दयिताय कृपाभये कृष्णसम्बन्ध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिद श्रीगौरा करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणि श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये अलम्बारसाम्बोधे आदाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ते विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ते स्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भावभूमेस्त्वम् निर्देशा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषये नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तेतां शरतोर्भङ्गोर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्भोजो राधामदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो प्रश्रालविसेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणोस्वनेर्गोपीर्गोपिनाथः श्रियस्तु नः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna. आज एकादशी है और साथ साथ में आज होलीनेस श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का दीक्षा का भी समारोह है। वैसे तो हम हर एकादशी को हम प्रभुपाद लीलामृत से हम पाठ करते हैं, लेकिन आज दीक्षा का सेरेमनी है तो मैंने सोचा कि दीक्षा के विषय में कुछ चर्चा किया जाए। तो ये दीक्षा का जो सेरेमनी है उसके विषय में चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे आत्मसमान। दीक्षा शब्द का अर्थ क्या है? दीक्षा शब्द का अर्थ है कि आत्मसमर्पण। ये शरणागति का एक सर्टिफिकेट है। जैसे कोई व्यक्ति कॉलेज में पढ़ाई करता है, एग्जाम लिखता है, उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है उनको, आप कॉलेज में पास हुए हो या अच्छी तरह से आपने पढ़े हो, इसके विषय में सर्टिफिकेट मिलता है। उसी प्रकार दीक्षा एक सर्टिफिकेट है। किसका सर्टिफिकेट है? आपकी शरणागति का सर्टिफिकेट है। तो एक दीक्षा एक टाइटल नहीं, एक पदवी नहीं है। कोई एक समाज में मेरा एक स्थान नहीं है कि अभी मैं दीक्षित हूं, आज मैं ब्राह्मण दीक्षा ले रहा हूं या मैं आज से ब्राह्मण हूं। तो एक औपचारिकता, एक सोशल चीज नहीं है, ये पूर्ण रूप में आध्यात्मिक चीज है। पूर्ण रूप में आध्यात्मिक चीज होने की वजह से हमको इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लेना चाहिए। किसी ने कहा मुझे परसों कि प्रभु जी उनका दीक्षा हो रहा है, मेरा क्यों, मेरा नहीं हुआ। मैंने कहा कि दूसरा व्यक्ति अगर उनके घर में लूट मार होती है तो आप बोलोगे मेरे घर में क्यों नहीं हुआ। अगर मान लो कि दूसरा का मृत्यु होता है उस समय क्यों नहीं बोलते कि मेरा क्यों नहीं हुआ। तो ये दूसरे से कंपेयर करने वाली चीज नहीं है, उसका हुआ तो मेरा, मेरा हुआ तो किसी का। ये जो है भौतिक स्तर में हम कोई चीज को, आध्यात्मिक चीज को देखते हैं, भले वो आध्यात्मिक है लेकिन हमारी दृष्टि भौतिक होने की वजह से उसकी जो वास्तविक स्थिति है उसमें हम कमी आ जाती है, उसकी वास्तविकता को हम पहचान नहीं पाते। तो आज दीक्षा की वास्तविकता के विषय में चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। दीक्षा का मूल आधार क्या है? जैसे मैंने कहा शरणागति। जिस दिन आप शरणागत होते हो, जितना हद तक आप शरणागत होते हो गुरु के प्रति, भगवान क्या करते हैं, कृष्ण क्या करते हैं, आपको उनके ही समान मान लेते हैं। कृष्ण सोचते हैं कि मेरा व्यक्ति हुआ, आज से मेरा व्यक्ति हो गया, योर माइंड, ऐसा कृष्ण मानते हैं। लेकिन उसका मूल आधार क्या है? शरणागति है। तो शरणागति के विषय में भगवद गीता में अर्जुन जिस प्रकार भगवान कृष्ण का शरण लिया, तो उसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। अर्जुन बहुत सारा चीजें कह रहा था भगवान को पहले अध्याय में कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मेरे सगे संबंधी है, मैं इनको कैसे मार सकता हूं। तो भगवान ने अर्जुन को कहा तुम्हारा ये जो आसक्ति है सगे संबंधियों के प्रति, वो आसक्ति ही तुम्हारा अज्ञान का कारण है। अगर तुम अज्ञान में रहोगे, भौतिक जगत के प्रति ममता रखोगे तो तुम अज्ञान में हो और तुम मेरे शरण में नहीं हो और तुमको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तब देखिए कि अर्जुन एक अच्छा व्यक्ति था ऐसा देखा जाए तो,
लेकिन अच्छा व्यक्ति उसकी अच्छाई कैसे दिखाई पड़ रहा था, उनकी परिवार वालों के साथ संबंध के साथ देख रहा था। तो भगवद गीता में दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में अर्जुन ने भगवान का शरण लिया, उन्होंने कहा कार्पण्य दोषो बोध स्वभाव पुच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेयम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, मैं आपका शिष्य, मैं शिष्यत्व को स्वीकार करता हूं, शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं पूर्ण तरीके से आपका शरणागत हो चुका हूं, तो इसलिए मेरे लिए श्रेय कर क्या चीजें बताइए। अभी सबसे पहले अर्जुन ने अपने आप का परिचय दिया, कार्पण्य दोषा कृपणता। ये कृपणता क्या है, व्हाट इज दिस कृपणता? हमारा इस परिवार वालों के साथ या शरीर के साथ संबंधित चीजों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति जो हमारी आसक्ति है, वही हमारी कृपणता है, वही हमारी दुर्बलता है। इसलिए जब तक ये शरीर और शरीर के संबंधित जो चीजें हैं, जब तक इन चीजों के प्रति आसक्ति रहता है, तब तक हम दीक्षा के लिए योग्य नहीं माने जाते। ऐसे कहा गया है शास्त्र में, खास करके कपिल देवी की संवाद में, प्रसंगम अजरम वासम आत्मन कवयो विदु सैव साधुसु कृतो मोक्ष द्वारम पावृतम। तो हमारी जो आसक्ति है इस भौतिक जगत और भौतिक जगत के लोगों के प्रति या संबंधियों के प्रति, जब तक ये आसक्ति रहेगा तब तक हम ये समझने के चाहिए कि हमारी जो नरक का द्वार खोल के बैठे हैं। लेकिन वही आसक्ति जब हम गुरुओं के प्रति लगाएंगे, साधुओं के प्रति लगाएंगे, वही आसक्ति जो है हमारा मुक्ति का कारण बनता है। तो दीक्षा के दिन हम क्या साबित कर रहे हैं भगवान के सामने, गुरु के सामने, वैष्णव के सामने, अग्नि के सामने? अस्तित्व में वैष्णव है, अग्नि है, गुरु है और भगवान है। वैसे तो देखा जाए तो मंदिर के प्रांगण में दीक्षा हो रहा है, तो अग्नि के सामने आपने व्रत लिया कि मैं ये नियम पालन करूंगा, अग्नि के सामने वैष्णव के सामने एक व्रत लिया और गुरु के सामने एक प्रतिज्ञा लिया और श्री विग्रह के सामने, क्योंकि ये सब जहां रहता है देवता भी रहते हैं, इसलिए ये जो पांच चीजें हैं उन लोगों के सामने आप प्रतिज्ञा लिया। क्या प्रतिज्ञा लिया? आज से मैं, मेरी आसक्ति केवल आध्यात्मिक चीजों के प्रति है और मेरे परिवार और अन्य जितने भी शारीरिक संबंधियों के प्रति नहीं है। तो आपने एक प्रतिज्ञा लिया है, ये है दीक्षा। दीक्षा मतलब जिस दिन आपने प्रतिज्ञा लिया कि मैं, मेरी आसक्ति केवल कृष्ण और कृष्ण के संबंधित व्यक्तियों के प्रति है और अन्य लोगों के प्रति नहीं है, तो ये दीक्षा मानी जाती है। अर्जुन अभी तक अपने परिवार वालों के संबंध में था, लेकिन अभी कृष्ण को कहा उन्होंने कार्पण्य दोषः, ये कृपणता है, मेरी दुर्बलता है, मैं अभी इससे मुक्त होना चाहता हूं। मुक्त होकर क्या करना चाहता हूं? शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शरण लेना चाहता हूं। अभी अर्जुन इतना बड़ा व्यक्ति था, इतना बड़ा विद्वान था, विद्वान होने के साथ साथ में इतना शक्तिशाली व्यक्ति भी था, पूरा राज्य का राजा था, होने पर भी एकदम बिल्कुल नम्रता से भगवान के पास में आया। तो इसलिए ये दो जो महत्वपूर्ण गुण है, ये दीक्षा के लिए या दीक्षा लेने से पहले हर एक शिष्य को ये देखना चाहिए कि क्या मेरे पास ये गुण है क्या। सबसे पहला क्या है? वैराग्य। दूसरा क्या है? नम्रता। जब तक ये नम्रता और वैराग्य नहीं रहता है, तब तक हम अपने आप को दीक्षा के लिए योग्य नहीं मानना चाहिए। अगर मान लो कि हम अपने आप को दीक्षा लेना की उत्सुकता को, उत्सुकता के साथ हम ये दो चीजों को कैर नहीं किए, दीक्षा लेने के बाद भी उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। जिस प्रकार बारिश होने पर भी बंजर भूमि में या पत्थर के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो कि खेती है, उस खेती में अगर बहुत सारे पत्थर है, बंजर भूमि है, बारिश उधर भी गिरता है और एक सार वाला खेती है उधर भी बारिश गिरता है, लेकिन फसल जो है वो पत्थर वाली जमीन में या जो सार नहीं है जिसके अंदर, वो बंजर भूमि में नहीं फसल नहीं उगता। उसी प्रकार हो सकता है कि दीक्षा के दिन 100 लोग 150 लोग बैठ जाएं, सभी लोग महात्मा हैं, सभी लोग भूमि हैं, लेकिन फिर भी अगर भक्ति का उदय उसी व्यक्ति के अंदर होगा जब ये दीक्षा नामक कृपा का बारिश सही हृदय में गिरेगा। इसलिए हमारे हृदय को तैयारी करने की जो प्रतिक्रिया है उसको पुरश्चर्य कहा जाता है। शास्त्रों में दीक्षा लेने से पहले 1 साल 2 साल 3 साल तक हम रोकते हैं, देखते हैं। क्यों देखते हैं, क्या विचार किया जाता है, क्या उनका हृदय नम्र है या शरणागत है, ये चीज को बहुत ध्यान से देखा जाता है। जब हम देखते हैं कि उसका हृदय बहुत नम्र हो गया है, कोमल हो चुका है और इनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ है भजन के द्वारा, पुरश्चर्य के द्वारा, तब उनको दीक्षा नामक सर्टिफिकेट दिया जाता है। क्योंकि जब उस समय वो व्यक्ति जब हरिनाम जप करता है, भक्ति के कार्य करता है, तो हृदय के हृदय में भक्ति जो है वो प्रकट होती है, वो उसका विकास होता है। नहीं तो कितना भी वो साधु संघ करे, कितना भी वो दीक्षा ले, ब्राह्मण दीक्षा भी क्यों ना ले, संन्यास दीक्षा भी क्यों ना ले, अगर हृदय में कोमलता नहीं है, हृदय में वैराग्य की भावना नहीं है, तो क्या होगा, तो वो भक्ति का वर्धन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हर एक बच्चा जो स्कूल में जाता है ये जरूरी नहीं वो पास हो जाता है। ये दीक्षा जो है उसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इनिशिएशन कहा जाता है। इनिशिएशन का अर्थ क्या है, शुरुआत। यानी आपने बच्चे को स्कूल में डाला, लेकिन अधिकांश लोग समझते हैं कि इनिशिएशन एक परीक्षा है। दीक्षा परीक्षा नहीं है, दीक्षा एडमिशन है। जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि ये परीक्षा है, बस अभी मिल गया, हो गया, पास हो गया, मेरे सारे कर्म मेरे गुरु ने ले लिया। हमारे गुरु एक कचरे का डब्बा नहीं है जिसके अंदर आप अपने सारे बुरा कर्म को डाल दोगे। खासकर दक्षिण भारत में बचपन में हमको सिखाया जाता था, जब आप कोई वरिष्ठों को प्रणाम करोगे, गुरुजनों को प्रणाम करोगे, बड़े लोगों को प्रणाम करोगे, उनका चरण स्पर्श करोगे, उस समय आपको सीधा उनका चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए दोनों हाथों से। ऐसा हमको सिखाया जाता था कि दोनों हाथ ऐसा क्रॉस करके चरण स्पर्श करें। क्यों, इसका उद्देश्य क्या है, मेरा जितना ही बुरा कर्म मेरे मेरे पास ही रहने दीजिएगा, लेकिन मेरा अगर कुछ अच्छा ही है मेरे पास वो मैं आपको देना चाहता हूं। लेकिन लोगों के मन में ऐसा क्या है, बस कैसे भी दीक्षा हो जाए, क्योंकि दीक्षा के दिन हमने सुना गुरु सारे हमारे बुरा कर्म ले लेते हैं, अभी मैं बुरा कर्मों की वजह से, पापों की वजह से मैं बहुत दुख भोग रहा हूं, चलो आज से वो ले लेंगे, वो हजम कर लेंगे, अभी नया खाता मैं खोलूंगा। नहीं, इट इज नॉट सो। तो दीक्षा का महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहला क्या है, शरणागति। शरणागति के अंतर्गत दो बातें हैं, एक है वैराग्य और दूसरा क्या है, नम्रता। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण तभी हो पाएगा जब वैराग्य है, नम्रता है। वैराग्य इसलिए है क्योंकि हमारी अनासक्ति को दिखा रहे, किसके प्रति अनासक्ति को, जो बहिरंगिक चीजें हैं उनके प्रति अनासक्ति को वैराग्य कहा जाता है, लेकिन अहंकार के प्रति अनासक्ति है उसको नम्रता कहा जाता है। और सूक्ष्म विचार है, नम्रता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी इज ऑल्सो एक रिनाउंसिएशन, ऑल्सो अनदर रिनाउंसिएशन। जब मान लो कि हमारे पास धन है, घर है, पुत्र है, परिवार है, ये सब बहिरंगिक चीजें हुए, तो इन चीजों के प्रति आसक्ति अनासक्ति जो है उसको वैराग्य कहा गया है। लेकिन ये मैं ये हूं, अहंकार, मेरे बराबर कोई नहीं है, मैं अच्छा गायक हूं, मैं अच्छा ये हूं, यानी अंतरंगिक चीज के प्रति जो आसक्ति है उसको अहंकार कहा जाता है, और उसको अंतरंगिक चीजों के प्रति, अहंकार के प्रति जो अनासक्ति है उसको नम्रता कहा जाता है। तो अंततः अनासक्ति है। तो इसलिए आप सनातन गोस्वामी की चर्चा में करेंगे, जब सनातन गोस्वामी के पास चैतन्य महाप्रभु के पास आए तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा। प्रश्न पूछने से पहले उन्होंने कहा, नीच जाति नीच संगी नीच कुविषय कुपे पड़ी गुआन जन्म मार। सनातन गोस्वामी पाद को भागवतम के 18,000 श्लोक याद थे, 18,000 श्लोक सब याद थे, बारह भाषाएं बोलने को बोल सकते थे, लिख सकते थे, बारह भाषाओं में पंडित थे, लेकिन क्या कह रहे अपने आप को? नीच जाति, नीच संगी। तो ये सनातन गोस्वामी पास इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के पास में आए, चैतन्य महाप्रभु के पास में आके उन्होंने शरण लिया। तद्विद्धि प्रणिपातेन, आप सबको श्लोक मालूम है भगवद्गीता का, तद्विधि हमारा जीवन का अर्थ क्या है, जीवन लेने का अर्थ क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन का अर्थ क्या है, इसके उपनिषद में कहा गया है तद्विधि तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम। गुरुं प्रपद्येत, गुरु के पास आके गुरु का शरण लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिज्ञासु, जिज्ञासा करना चाहिए मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूं। तद्विद्धि, तद्विद्धि क्या है? भगवान के साथ हमारा संबंध को जानना ही एकमात्र उद्देश्य, गुरु के पास जाना। ऐसा नहीं कि गुरु के पास जाके हमने आशीर्वाद दिया, महाराज अभी आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारा बिजनेस अच्छा हो जाए, ताकि हमारा परिवार अच्छा चले, मेरी बेटी का शादी हो जाए, बेटे का शादी हो जाए, ये सब चीजें गुरु के पास जाके बोलना ये हमारी मूर्खता है। शास्त्र में कहा गया है तस्मात गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासो, जिज्ञासा एकमात्र चीज है जिसकी वजह से हमको गुरु के पास आना चाहिए। इसलिए भगवद्गीता में भगवान कहते हैं तद्विद्धि, केवल भगवत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? प्रणिपातेना। प्रणिपातेना का अर्थ क्या है? प्रणिपातेना का अर्थ है कि हम बड़े वैराग्य के साथ, नम्रता के साथ हम गुरु के पास जा रहे हैं। सनातन गोस्वामी पाद अपनी नम्रता दिखाया, कैसे दिखाया? इतना महान वैष्णव होने पर भी, इतना ऊंचे पदवी में होने पर भी अपने आप को क्या कहते हैं? नीच जाति, नीच जाति, नीच संगी, कुछ है कुपे पड़ी गुवार जमार। तद्विद्धि प्रणिपात है। साथ साथ में आपने सनातन गोस्वामी विषय में सोचा, आपने सुना होगा जब वो रास्ते में आ रहे थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, उनके बहनों ही ने उनको कहा था एक कंबल लो तुम, कम से कम बहुत ठंडी है, कंबल लो। तो नया एकदम सुंदर महंगी कंबल था, वो लेके सनातन गोस्वामी पास आए चैतन्य महाप्रभु के शरण लेने के लिए। तो महाप्रभु का ध्यान बार बार उस कंबल के ऊपर जा रहा था, तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि महाप्रभु ये चाहते नहीं कि मैं कंबल इस्तेमाल करूं। तुरंत सनातन गोस्वामी गए, कहां गए? एक गंगा तट पे एक धोबी था बंगाल का, तो उन्होंने ये कंबल दिया, नया कंबल दिया उनको धोबी को, कहा कि मुझे उसके बदले में पुराना फटा हुआ कंबल दो। धोबी ने कहा कि तुम पागल हो गया हो क्या, मजाक कर रहे हो क्या, इतना महंगी इतना सुंदर नया कंबल है उसको वापस में तुम चाहते हो कि मैं फना पुराना कंबल दू? साथ में सुना कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे ऐसे ही चाहिए। धोबी ने कहा, खुश होकर दे दिया, पुराना फटा हुआ कंबल दिया। तो आते ही तुरंत लेके आके सनातन गोस्वामी वो कंबल लेके आए, तो चैतन्य महाप्रभु उनको देख के बहुत खुश हो गए। अभी सनातन गोस्वामी पास इतने बड़े पदवी में थे, उन्होंने त्याग किया इतना हद तक कि वो नया कंबल भी उन्होंने छोड़ दिया और पुराना कंबल को लिया, इससे एक स्टैंडर्ड स्थापना किया। महाप्रभु का शरण में जाने से पहले उनके हृदय में क्या दिखाया? एक तो अमृता दिखाया, दूसरा वैराग्य दिखाया। ये नम्रता और वैराग्य ऐसा दो महत्वपूर्ण गुण हैं हमारे हृदय में। ये इस हृदय में अगर कोई एक बार भी हरे कृष्ण मंत्र जप करता है, जैसे अगर खेत जो है बहुत सारवान है, उसके अंदर थोड़ा सा भी पानी डालो तुरंत सुंदर के उगता है। लेकिन मान लो दूसरी और बड़ा पत्थर वाला जमीन है, उसके अंदर कितना भी पानी डालते रहो कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारा हृदय एकदम बिल्कुल कोमल, नम्र और साथ साथ में कैसे होना चाहिए? वैराग्य। इसको दीक्षा कहा जाता है। मान लो कि जिसका हृदय इस प्रकार हुआ, मान लो इस बार नहीं मिला तो अगली बार भी लगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बारिश मान लो कि एक बार नहीं आया, दूसरी बार आया तो कभी ना कभी इसके हृदय में वो भक्ति का उदय हो सकता है। इसलिए ये दो महत्वपूर्ण है। प्रणिपात है ना, मान लो किसी न किसी तरीके से प्रणिपात है ना हो गया, दूसरा क्या है परिप्रश्नेना। परिप्रश्नेना का अर्थ क्या है, गुरु के पास आके प्रश्न पूछना चाहिए। सनातन गोस्वामी पाद को ये इस प्रश्न का जवाब नहीं मालूम था केम न जारिता पत्र है। भागवत के सारे 18,000 श्लोक जिनको याद है, क्या उनको इस प्रश्न का जवाब नहीं मालूम मैं कौन हूं, मैं क्यों दुख भोग रहा हूं, इस प्रश्न का जवाब नहीं मालूम था सनातन गोस्वामी पाद को? मालूम था, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रश्न पूछा। क्यों? तद्विजिज्ञासस्वात्। क्योंकि ये जो नम्रता और वैराग्य, ये माया का प्रभाव से कभी भी जा सकता है। माया इतना कठोर है, खास करके जब दीक्षा लेना चाहता है या लिया है उसके ऊपर माया का प्रकोप ज्यादा रहता है। अब देखिए दीक्षा का पहले 2-3 महीने पहले सब लोग एकदम बिल्कुल ठाठन बंगला में, दीक्षा हो गया बाद में 1 महीने के बाद, प्रभु जी कहां है, प्रभु जी बहुत तकलीफ है थोड़ा सा पंद्रह साल से मैं यही देख रहा हूं दीक्षा के दिन में, जैसे गाड़ी में अब भी दस्त आया तो देखा कि अरे संडे तो इतना भीड़, अगर रोज होता कितना अच्छा आज दीक्षा है, साल में जीवन में एक ही बार होने वाला है, बस जाके आ जाओ। जितनी दीक्षा लेने वाले अगर हर संडे सुबह आया है कितना अच्छा है। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, ये माया जो है ऐसा कार्य करती है जो भौतिकवादी को पहले से अपने चंगुल में रखी है, इसलिए उनके ऊपर ज्यादा प्रकोप नहीं दिखाती माया। लेकिन भक्त होता है ना उसके ऊपर ज्यादा प्रकोप दिखाती है माया। क्यों? मान लो कि कोई एक सेना है, किसी और राज्य के ऊपर उन्होंने कब्जा प्राप्त कर लिया है तो उसके ऊपर ज्यादा इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर कोई और सेना विद्रोह करने के लिए आ रहा है उसके ऊपर ज्यादा शक्ति दिखाता है। भक्त क्या करता है, माया से मुक्त होने का प्रयास करता है, माया से युद्ध करने के लिए प्रयास कर रहा है, इसलिए माया क्या करती है उसके ऊपर ज्यादा प्रहार करती है। जब माया प्रहार करती है उससे बचे कैसे? वैष्णव है, साधु है, शास्त्र है, सब कुछ है, लेकिन शास्त्र में कहा गया है तद्विजिज्ञासस्वात्। भगवान कौन है, भागवत में क्या लिखा है, भगवद्गीता क्या है, जब तक उसको तीव्र तरीके से जानने की लालसा नहीं है तब तक ये माया जो है बहुत प्रकोप रूप में सबको सुला देती है। ये मत समझे कि दीक्षा लेने के बाद माया का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं रहेगा, ज्यादा रहेगा, इडली मोर। वो सोचती है कि अच्छा तो मेरे चिंगुल से मुक्त होना चाहते हो, चलो मैं देखता हूं। इसलिए ज्यादा सीरियस होना चाहिए। कुछ लोग काउंसलिंग मीटिंग अटेंड करते हैं, दीक्षा हुआ उसके बाद काउंसलर कौन है क्या है कुछ मालूम नहीं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, दीक्षा के बाद व्यक्ति को ज्यादा सीरियस होना चाहिए, नहीं तो माया पूरा उसको सुला देती है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, ये प्रश्न परिप्रश्नेन का अर्थ क्या है, हमारी जिज्ञासा को व्यक्त कर रहे हैं, कोई माया में कौन है। इसलिए शास्त्र में जिज्ञासा के विषय में कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अरे मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ तो जिज्ञासा करो, जैसे अर्जुन ने किया, यह श्रेय। अर्जुन का जिज्ञासा क्या था, यह श्रेय। सनातन गोस्वामी की जिज्ञासा क्या था, के अमी मैं कौन हूं, केम ने जा रहा तापत्र में दुखों को क्यों अनुभव कर रहा हूं। इसलिए एक प्रकार की लालसा होना चाहिए, मैं और सुनू, मैं और जानू, इस प्रकार की लालसा के द्वारा हमारी जो दीक्षा है उसकी परिपूर्णता होता है। जैसे माता पिता सोचेंगे ठीक है मेरे बच्चे एडमिशन हो गया शांति से बैठेंगे, लेकिन बच्चा स्कूल जा रहा है लेकिन पढ़ाई नहीं करता, क्या फायदा? अंग्रेजी ने बहुत सुंदर नाम दिया है दीक्षा के लिए, इनिशिएशन बोला, एग्जामिनेशन नहीं बोला, बहुत अच्छा कम से कम इनिशिएशन करते शुरुआत एडमिशन। तो इसलिए एडमिशन, बच्चे को आपने स्कूल में एडमिशन करा दिया तो उसके बाद बच्चा पढ़ना चाहिए। उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति अपने आपको एक कॉलेज में एडमिशन लेता है, उसके बाद पढ़ना चाहिए। तो दीक्षा लेने के बाद उनको ज्यादा सुनना चाहिए, ज्यादा भगवत क्लास में आना चाहिए और भगवद्गीता भागवत उनको ज्यादा पढ़ना चाहिए और तीव्रता को व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि उनको एक जिम्मेदारी दी गई है। पहले जिम्मेदारी नहीं था लेकिन अभी जिम्मेदारी है। अस्तित्व में जिम्मेदारी की बात चल रही है। दीक्षा के दिन यज्ञ होता है, अस्तित्व में क्या हो रहा है मालूम है? बहुत सारे ग्रस्त बैठे हैं, आपका जब विवाह हुआ था यज्ञ हुआ था, लेकिन वो कौन सा यज्ञ है, वो कौन सा विवाह है? भौतिक विवाह है, वो शरीर का विवाह है। ऐसा नहीं कि दो आत्माओं का विवाह होता है, दो शरीरों का विवाह हुआ, उसको भौतिक विवाह कहा गया है। दीक्षा को अगर सरल भाषा में कहूं उसको आध्यात्मिक विवाह कहा जाता है, इट इज स्पिरिचुअल मैरिज। आध्यात्मिक विवाह का अर्थ क्या है? उस दिन आपने गुरु को पति के रूप में स्वीकार किया। जब आपका विवाह हुआ था उस समय आपने जब पति को स्वीकार किया और पति ने पत्नी को स्वीकार किया पत्नी के रूप में, तो उस दिन हुआ क्या है? उस दिन हुआ क्या? ऐसा नहीं यज्ञ हुआ अभी हमारा शादी हो गया। शादी जो शब्द है ना वो बहुत खराब शब्द है, वो उर्दू शब्द है, मतलब एक एक पार्टी है। शादी मतलब उर्दू में पार्टी। आज हो गया पार्टी, पता नहीं कल क्या होने वाला है इसलिए वैदिक संस्कृति में शादी नहीं बोला जाता, इसको विवाह बोला जाता है। आप बोलोगे मैरिज हुआ हमारा, मैरिज, मैरिज जो है वो एक लीगल टर्म है, वो ये कानूनी एक टर्म है जो पाश्चात्य देश में अंग्रेजी में मैरिज का अर्थ है एक कॉन्ट्रैक्ट। समझा? कॉन्ट्रैक्ट, ये काम होने तक हम दोनों साथ रहेंगे, बाद में पता नहीं किसी और को भी हम चुन सकते हैं। लेकिन विवाह कुछ और चीज है। विवाह शादी नहीं होता, विवाह मैरिज नहीं होता। विवाह मतलब क्या है कि उस दिन एक व्यक्ति एक स्त्री पुरुष को किस रूप में स्वीकार करती है? वराय विश्व रूपाय। विष्णु स्वयं आ नहीं सकते क्योंकि मैं अभी भी बद्ध अवस्था में हूं, लेकिन वही भगवान मेरे पति के रूप में आए। क्यों आए? मेरी रक्षा करने के लिए आए हैं। इसलिए मेरा कर्तव्य क्या है? हर परिस्थिति में उनका सेवा करना, किसी और का स्मरण किए बिना केवल अनन्य भाव से उनका सेवा करना। उस दिन आपने उस दिन हर एक पति ने व्रत लिया है। विवाह के दिन पति ने क्या व्रत लिया है? हर परिस्थिति में उनका रक्षा करूंगा। एक है पति ने वादा किया कि मैं सेवा करूंगी, और पति ने क्या किया? वादा क्या किया? अच्छा, वो भौतिक स्तर की बात है। दीक्षा के दिन वही चीज हो रहा है लेकिन आध्यात्मिक स्तर में। एक शिष्य जो है पत्नी के रूप में गुरु को पति के रूप में स्वीकार करते हैं। स्वीकार करके क्या वादा करते हैं? क्या वादा करती है हर एक पत्नी या हर एक शिष्य? क्या वादा करता है? हर परिस्थिति में मैं गुरु का सेवा करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे घर बार बेचना पड़े, गुरु का सेवा करूंगा। बस रामानुजाचार्य का प्रसंग सुनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं अभी दक्षिण भारत की यात्रा से एक दिन के लिए छुट्टी लेके आया हूं दीक्षा सेरेमनी अटेंड करने के लिए नहीं आया हूं, खाली ये सब चीजें बोलने के लिए आया हूं कम से कम एक आध तो सुन ले कम से कम श्रीपाद रामानुजाचार्य कल शाम को उसी जगह था, कल इसी टाइम में उस जगह थे जहां श्रीमान रामानुजाचार्य ने भगवान को दीक्षा दे दिया। एक जगह है दक्षिण भारत में, इसको तिरुकुरुंगुड़ी बोला जाता है, तिरुनवेली के नजदीक में है, खल्टी किसी समुद्र ही था। तो उधर रामानुजाचार्य उस समय केरल में थे, तो उधर की जो पूजा की व्यवस्था को ठीक करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन उधर के जो लोग हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा था। रामानुजाचार्य कहां से आ, तमिलनाडु से आके हमको क्या बता रहे, हमको क्या शिक्षा दे रहा है। तो लोगों ने क्या किया, रामानुजाचार्य को मारना चाहते इतना हद तक, लेकिन भगवान की योजना से रामानुजाचार्य ने, गरुड़ ने उठा के रामानुजाचार्य को उठा के एक तिरुकुरुंगुड़ी के पास लेके आए रात में। रामानुजाचार्य को मालूम नहीं था, मैं कहा हूं, सुबह उठे, उठने के बाद तो उनका एक सेवक थे, उनका नाम था वड़गा। हे वड़गा कहां हो तुम? तुरंत तो उनका सेवक आए, आके सब सेवा किया। तो ने वड़गा ने कहा कि मैं आपका सेवा कर रहा हूं, लेकिन आपने मुझे तक अभी आपने गुरु मंत्र नहीं दिया है, दीक्षा नहीं दिया है। रामानुजाचार्य को लेके गए, उन्होंने काम में दीक्षा दिए, मंत्र बोल के कारण दीक्षा दिए। दीक्षा देके उन्होंने रामानुजाचार्य का तिलक धारण किए, जो बचा हुआ मिट्टी है उससे उन्होंने उस अपने शिष्य जो है वड़गा को लगा दिया। रामानुज ने कहा कि ठीक है, हम लोग पता नहीं भगवान की योजना से इधर आ गए, चलो भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। उनके हाथ में कुछ फूल दिया, चलो। साथ साथ में जा रहे थे दोनों मंदिर में, उनका शिष्य थोड़ा सा मंदिर पहुंचने ही वाले थे, रामानुजाचार्य के आगे निकल मंदिर के अंदर पहुंच गए। रामानुजाचार्य सोचने लगे, अरे कहां गया है मेरा शिष्य, ठीक है इधर गया होगा, चलो मंदिर के अंदर जाता हूं। भगवान के जैसे दर्शन किया तो ने देखा जिस तिलक से, जिस मिट्टी से रामानुजाचार्य ने ये वड़गा को तिलक लगाया था, वही तिलक वो भगवान के ऊपर है। रामानुजाचार्य समझ गए कि भगवान स्वयं मेरे सेवक के रूप में आए थे और मैंने उनको दीक्षा दिया। तो भगवान से बोलने लगे, आपने ऐसा क्यों किया, मेरा सेवा क्यों किया, मेरा कर्तव्य बनता है आपका सेवा करना। भगवान ने कहा, आप दुनिया में सब लोगों को दीक्षा देके उद्धार कर रहे हो, मैं भी चाहता था मैं भी, मेरा भी उद्धार हो जाए। अब देखिए, दीक्षा लेने के लिए केवल शिष्य नहीं, भगवान भी उत्सुक है। एग्जैक्टली यही टाइम में था उधर तिरुकुरुंगुड़ी बोला जाता है, कभी मौका मिले तो अभी आपको भी लेके चलेंगे। तो रामानुजाचार्य के आचार्य की महिमा जो है वो शिष्य से बढ़ती है। आचार्य की महिमा किस प्रकार बढ़ती है, रामानुजाचार्य अभी तक क्यों जानते हैं, किसके वजह से जानते हैं लोग, उनके शिष्यों की वजह से जानते हैं। प्रभुपाद जी का पूरा विश्व में क्यों जानते हैं, किसके वजह से जानते हैं, बोलिए, हमारी वजह से जानते हैं। अगर हम अच्छे हैं तो लोग क्या बोलेंगे, प्रभुपाद जी अच्छे। अगर हमारे व्यवहार ठीक नहीं है तो क्या बोलेंगे, पता नहीं कैसे शिष्य बना दिए प्रभुपाद जी ने। अब देखिए कितना बड़ा जिम्मेदारी है आज, यानी आपका गुरु का इज्जत किसके ऊपर है अभी, यानी दीक्षा के दिन हम सोचते हैं कि हमने गुरु के ऊपर विश्वास करके शरण लिया, दीक्षा लिया, वो तो बात की बात है, आपका विश्वास हो ना हो बात की बात है, लेकिन गुरु ने आपके ऊपर विश्वास करके दीक्षा दिया, ये समझिए। क्या विश्वास किया, ये अच्छा जप करेगा, अच्छा भगवान की सेवा करेगा, कम से कम उनका इज्जत बचाने के लिए तो हमको सीरियस होना चाहिए। एक बार श्रीपद रामानुजाचार्य जा रहे थे, बहुत सारे शिष्यों के साथ जा रहे थे, उनका एक गांव में दो शिष्य थे, एक अमीर शिष्य था, दूसरा था एक गरीब धनुर्धर नहीं, नाम क्या है किसको याद है, नाम याद, ठीक है, गरीब शिष्य था, ब्राह्मण था, रोज भिक्षा मांगने जाता था, जो भिक्षा मिलता था उससे रहता था। दूसरा जो शिष्य था अमीर था, उन्होंने सोचा कि मेरे पास बहुत सारे शिष्य हैं, हो सकता है कि ये गरीब शिष्य जो है वो इन सबको खिला नहीं पाएगा, तो जो गांव के दूर में थोड़ा सा एक बड़ा तालाब था, सब नहा रहे थे, रामानुजा ने कहा एक शिष्य को जाके तो उस अमीर शिष्य को बोलो कि हम सब आए। उस शिष्य का के उन्होंने कहा, रामानुजाचार्य आए अभी आपके घर में आने वाले हैं इतने सारे शिष्यों के साथ, तुरंत बड़ा उत्साहित होकर अमीर शिष्य जो है सब व्यवस्था करने लगा। तो ये शिष्य वापस आके रामानुजाचार्य को कहा कि आपके लिए बड़ा व्यवस्था चल रही है, बहुत अच्छा स्वागत के लिए तैयारी चल रही है। रामानुजाचार्य ने पूछा, वो तो ठीक है, वो तो बात की बात है, लेकिन जब आप गए थे इनको बताने के लिए, आपको आपके साथ कैसे व्यवहार किया? तुमने कहा कि आपका नाम सुनते इतना उत्साहित हो गए, इतना वो उत्साह में आ गए, एक्साइटमेंट में हो गए, आ गए कि मुझे पानी तक नहीं पूछा था। तो रामानुजाचार्य ने कहा, जिस जगह मेरा शिष्य का स्वागत नहीं हो उस जगह मैं नहीं जाऊंगा, भले वो गरीबी शिष्य क्यों ना, मैं उनके यहां जाऊंगा। चलो उन सबको लेके, कम से कम 500-600 शिष्य थे, सबको लेके पहुंचे एक गरीब शिष्य के घर में। एक कुटिया थी बस, और रामानुजाचार्य बाहर से वो बोलने लगे कि मैं आया हूं आपके घर में। अंदर से आवाज आई, मेरे पति घर में नहीं है और मैं स्नान कर रही हूं, थोड़े देर रुकिए, मैं आप दरवाजा खोलती हूं। यानी उनके शिष्या का आवाज आया अंदर से। इतने गरीब अवस्था में थे उनके वो उनकी गर्भी और माता, कि वो जब स्नान करने जाते थे उनके पास एक ही जोड़ी कपड़ा था, तो स्नान करके उसी को धोके सुखाने के बाद पहन के वापस आके दरवाजा खोल सकती। रामानुजाचार्य ने अपना अंग वस्त्र को निकाल के अंदर दिया, वो धारण करके आई, दरवाजा खोली और सबको अच्छे से बिठाया, प्रणाम किया, स्वागत किया। स्वागत करके वो ने कहा कि मेरे पति घर में नहीं है, आप सब बैठिए, आप सबके लिए मैं बहुत सुंदर भोजन बनाऊंगी। अंदर गई किचन के अंदर, एक दाना चावल भी नहीं है, क्या करें? तो घर के पीछे दरवाजे से बाहर गई। उस शहर में, उसी गांव में एक व्यापारी रहता था जिनका मन था इसके ऊपर, ताकि इनके साथ में, वो मेरे साथ में रहे, उनको पत्नी के रूप में स्वीकार करे। लेकिन तो ब्राह्मण पत्नी थी, सुशील थी, पतिव्रता थी, तो ये सब प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। तब उनको याद आया, उसका याद आया, तुरंत उसके पास गई, व्यापारी के पास गई, तो व्यापारी एकदम बिल्कुल ये हो गया, चौंका गया, अरे आप कैसे आए हो? मैं आपका शरण लेती हूं, आपको मेरे साथ जो करना है कर सकते हो, लेकिन एक थोड़ा सा, मेरा घर में मेरे गुरु आए, मेरे बहुत सारे शिष्यों के साथ, उनको मुझे स्वागत करना है, उनको भोजन खिलाना है और मुझे कुछ सामान की आवश्यकता। उन्होंने कहा कि अरे ऐसा है क्या, जो चाहे वो लेके जाओ। बड़े खुश हो गए, सब बहुत सारा सामान लेके आए, बहुत सुंदर पकाए पकवान बनाई और सबको खिला रही थी। उस समय उनके पति आए, पति आके देखा कि ऐसा बड़ा सुंदर ये चल रहा है, हवा चल रहा है, प्रसाद हो रहा है, रामानुजाचार्य आए शिष्यों के साथ। तो सब होने के बाद, खिलाने के बाद, पति ने पत्नी को अंदर लेके आके पूछा कि ये सब सामान तो आया कहां से तुम्हारे पास? तब पत्नी ने सब बताया, सब बात उनको पति को बताया। ये बताए वो पति तुरंत प्रणाम किया पत्नी को, कहा कि पता नहीं मेरा कौन सा जन्म का सौभाग्य है, मेरा कौन सा जन्म का पुण्य है जिसकी वजह से मुझे ऐसी पत्नी प्राप्त हुई। असल में शीलता होती है ना, वो एक स्त्री का सबसे बड़ा संपत्ति होता है। तो रामानुजाचार्य कैसे ऐसे शिष्य थे, गुरु की सेवा करने के लिए इतना महान संपत्ति, अपनी शीलता को भी त्याग करने के लिए तैयार थी। एक उदाहरण, ऐसा नहीं कि सबको करना है, लेकिन एक उदाहरण की बात है कि एक व्यक्ति को, एक शिष्य को कितना हद तक भी जाना चाहिए एक शिष्य गुरु की सेवा करने के लिए। तब रामानुजाचार्य बाहर थे और ये बातें सुन रहे थे, तुरंत अंदर आके उनको शिष्य को कहा, मेरा उच्चिष्ट है, लेके जाओ, तुम जाओ व्यापारी के पास जाओ। तो स्त्री गई व्यापारी के पास, बड़े बड़े खुश होकर बोला, स्वागत किया, आओ, आज से आप तो रानी के जैसे रहोगे, मेरे साथ में मेरी पत्नी के रूप में रहोगे, आओ। तब उन्होंने कहा कि मैं, आपने इतना अच्छा किया, मेरे गुरु को सेवा अच्छा हो गया, थोड़ा उनका प्रसाद है, महाप्रसाद स्वीकार कीजिए। जैसे व्यापारी ने रामानुजाचार्य का महाप्रसाद स्वीकार किया, महा महाप्रसाद स्वीकार किया, तुरंत उनका मन परिवर्तन हो गया। और जब उन स्त्री को देखता है, उनकी वो जो रामानुजाचार्य की पत्नी, वो माता जी को देख रहा था, उनको वो जो पहले जो दृष्टिकोण से देख रहा था कामुक वासना से, वो हो ही नहीं पा रहा था, केवल एक मां के रूप में देख पा रहा था। देखिए ऐसे शिष्य बनना है, दिस इज कॉल्ड डिसाइपल। डिसाइपल का अर्थ क्या है? डिसाइपल कम्स इन द वर्ड डिसिप्लिन। एक ही डिसिप्लिन है, एक ही मर्यादा है, क्या है वो? गुरु का सेवा। जब इस प्रकार कोई शरणागत होता है, ये समझना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में गुरु की जो शक्ति है वो इतना हमारे ऊपर कार्य करेगा, हमको कोई किसी तरह की तरीके से बाधा नहीं आएगी। कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी हम तो सेवा करते हैं, लेकिन सेवा किस भावना से करना चाहिए? नम्रता और वैराग्य की भावना से करना चाहिए। किसी ने पूछा इतना सेवा करने के बाद हमको इतना दुख क्यों मिलता है? किसी ने कहा कि हम इतना सेवा करते हैं हमको दीक्षा क्यों नहीं मिल रहा है? मैंने कहा कि सेवा किस भावना से कर किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। उधर वर्णन नहीं किया गया है कि वो जो वो गरीब शिष्य थे और रामानुजाचार्य को कितने बड़े पकवान खिलाए, वो महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण बात क्या था? शरणागति। अगर वो अमीर घर में जाते श्रीपाद रामानुजाचार्य, उनको हो सकता है बहुत सारा पकवान मिले, बहुत सारा दान दक्षिणा मिले, सेवा ज्यादा कर सकता है वो, लेकिन फिर भी क्या था? सेवा करने की जो भावना जो है वो उनके अंदर थोड़ा सा कमी था। सर्विस एटीट्यूड, प्रभुपाद जी बहुत बार बार इस शब्द के ऊपर आते थे, सर्विस एटीट्यूड। तो ये जो सेवा की जो भावना है वो भावना किसके ऊपर आधारित है? दो चीजें, क्या है वो? फिर वापस वैराग्य और नम्रता। ये बार बार इसके ऊपर विचार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसके बिना दीक्षा अधूरा है। इतना हद तक बोलो कोई फायदा नहीं। मेन थिंग इज दिस, डेवलप ह्यूमिलिटी। किसी ना किसी ने तरीके से ये नम्रता को विकास कीजिए। और दूसरा क्या है? वैराग्य। तो आगे चलते हुए आज के दिन क्या मिल रहा है उसके विषय में चर्चा करते हैं। सब लोग बोलेंगे प्रभु जी आज हमारा नया जन्म है, ऐसा सुना। नहीं, वही जन्म है लेकिन हमारा हृदय में परिवर्तन है। क्या है वो परिवर्तन? कि हम गुरु को किस रूप में देखेंगे? वो सेवा की भावना से देखेंगे। जैसे एक पति जो है पत्नी की सेवा कर, पत्नी जो है पति की सेवा करती है और गुरु उस दिन एक जिम्मेदारी लेते हैं, आप जब तक मेरे आज्ञा को पालन करोगे और मेरे सेवा में लगे रहोगे मैं आपको रक्षा करूंगा। इसलिए इस दीक्षा को क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक विवाह, ए स्पिरिचुअल मैरिज। अभी अंग्रेजी में तो विवाह शब्द का कोई अर्थ तो है ही नहीं, मैरिज ही यूज कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप में मैरिज नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। गुरु महाराज आप जब तक मुझे आशीर्वाद दोगे मेरा व्यापार अच्छा चले तब तक मैं आपका सेवा करूंगा, जैसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो दूसरे का सेवा करूंगा, नहीं। इस दोनों आध्यात्मिक विवाह, ए स्पिरिचुअल मैरिज। तो शिष्य गुरु का सेवा करता है, गुरु शिष्य का रक्षा करता है, दिस इज थिंग। चलिए अभी दीक्षा के विषय में थोड़ा सा हमने कहा, अभी दीक्षा के दिन हमको क्या प्राप्त होता है, उसका टेक्निकल नेम क्या है, उसका शास्त्रिक अर्थ क्या है। तो आज के दिन जो हो रहा है उसको पंच संस्कार कहा जाता है, पंच संस्कार दीक्षा। पंच का अर्थ क्या है? पांच। संस्कार का अर्थ क्या है? संस्कार का अर्थ है शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस। हमको आज ये पांच चीजें दिया जाता है गुरु के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा शुद्धिकरण होता है। उसके विषय में शास्त्र में कहा गया है कि जो पंच संस्कार जो है उसके बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। जैसे बच्चे को स्कूल में शिक्षा दिए बिना या गुरुकुल में डाले बिना उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद अगर हम ये इनिशिएशन दीक्षा नहीं लेंगे हमारा जीवन व्यर्थ है। सबको लेना ही चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि लेने के बाद हम मनमानी करेंगे या योग्यता के बिना ले लेंगे। दोनों अपनी अपनी बात स्तर पर सरी है। एक तो योग्यता प्राप्त करके लेना चाहिए और दूसरा लेना ही चाहिए मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद। शास्त्र में कहा गया ताप नाम तथा पुंड्र मंत्रो यागश्च पंचमः अमी ही पंच संस्कारो, अमी ही पंच संस्कारो। इसको पंच संस्कार का क्या है, पांच चीजें। सबसे पहला ताप, दूसरा है पुंड्र, तीसरा है नाम, चौथा है मंत्र और पांचवा है याग। ये पांच चीजें आपको आज मिल रहा है, यानी जो दीक्षा ले रहे हैं उनको मिला है, मिल रहा है, या दीक्षा ले चुके उनको मिल चुका है, पता नहीं याद है कि नहीं भूल गए होंगे, पर दीक्षा लिया था फौजी, पता नहीं क्या हुआ था उस दिन कुछ तो हुआ था, यज्ञ में बिठाए थे, पता नहीं किसने बोला दीक्षा हो रहे बैठ जाओ, भाई बैठ गया था। शुरुआत में हमारे मंदिर में मैंने पूछा ये आपका दीक्षा हुआ कैसे हुआ, पूछा पता नहीं कोई, मैं आया था मंदिर में किसी ने दीक्षा हो रहा है बैठ जाओ, बैठ गया पता नहीं क्या हुआ मुझे, तो मैं पूछा क्या कर रहे हैं, बस ये बोलना कि सोना माला जप करता हूं, शारदीय पालन करता हूं इसलिए परीक्षा लिया जाता है, इसलिए जाना जाता है। जब आपको बहुत तीव्र तरीके से जाना जाता है, इसलिए जाना जाता है कि आप पुरस्चर्य किए कि नहीं, योग्यता है कि नहीं, इसलिए देखा जाता है। तो सबसे पहला जो दीक्षा के मारे ये जो क्लास है, जो दीक्षा हो चुका उन लोगों के लिए भी है, ऐसा नहीं कि जो दीक्षा होने वाला उन्हीं लोगों के लिए है, तो स्मरण कर सकते हैं अच्छा अच्छा ये चीज से मिला था क्या, वही भी है कि नहीं सबसे पहला क्या है जो मिला है वो उसको ताप कहा जाता है। ताप आपका जिस दिन दीक्षा हुआ था या अभी दीक्षा होने वाला, आपको नया कंटी माला मिला था कि नहीं आपको, हाँ मिला था, नया कंटी माला मिला था, क्या है वो, ये किसके लिए मिला था, क्यों मिला था, दीक्षा हो रहा है इसलिए नया मिला था नया कंटी माला इसलिए मिला क्योंकि उस दिन गुरु ने आपको कहा, क्या कहा, अभी मैंने आपको जांचा है, तुम थक गए ना संसार में, इधर उधर भटक के बहुत जगह प्रयास किया ना सुख लेने के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, जितना सुख का प्राप्त करने के लिए प्रयास किया उतना तुमने दुख का अनुभव किया, अभी समझ गया दुनिया क्या है, समझ गया ना, यानी ये दुनिया ये जो भौतिक जगत की जो वास्तविकता को समझ गया है इसका एक प्रतीक है कंटी माला। क्या है दुनिया की वास्तविकता, क्या है, दुखालयम अशाश्वत, समझ गए प्रभु जी आप, इसलिए हर संडे को आते कीर्तन करते हैं, लेकिन जो नहीं आते क्या करेंगे, अभी भी समझा नहीं है, एक प्रतीक है कंटी माला, क्योंकि मैं कुछ भी पाप को अंदर नहीं डालूंगा, मांसाहार नहीं करूंगा, शराब या सिगरेट नशा नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब पाप है। दूसरा क्या है, कोई पापमय शब्द नहीं बोलूंगा, और पापमय जो चीजें और मन में स्मरण नहीं करूंगा, क्योंकि इस जगत में भक्ति कार्य के अलावा कोई भी कार्य हो वो सब पाप है। इसलिए कंटी माला किसका प्रतीक है, ताप। ताप मतलब क्या है, तप्त जलना। ये भौतिक संसार जो है बहुत बड़ा कड़ाई है, इसके अंदर तेल है और सबको इसके अंदर तला जा रहा है, माया जो है माया देवी तल रही है, जैसे माताएं पकौड़े तलते ना, माया देवी सबको तल रही है, ऐसा पूरा फ्राइड, जब अंग्रेजी बोलते इसको तो आई एम फ्राइड अप, तंग आ गया हूं अभी। लेकिन तंग आने में वापस वही करोगे, बहुत जन्म जन्मांतर तंग आ गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, खत्म हो गया, अभी बस अभी मुझे वापस नहीं जाना भौतिक जगत में। जब ये फ्रस्ट्रेशन आके एकदम इसको ज्ञान हो जाता है कि ये संसार दुखाल और अशाश्वत है, तब गुरु कहते हैं ठीक घंटी माला पहनो। एक सर्टिफिकेट है, जो इस भौतिक जगत का सार को जान लिया है उसको उसका एक सर्टिफिकेट है। यानी दूसरे शब्दों में लहसुन प्याज नहीं खाना, यानी लहसुन प्याज नहीं खाना मतलब कोई पापमय चीज को मुझे मेरे अंदर नहीं, केवल शुद्ध चीजों को ही खाना, शुद्ध चीजों को स्वीकार करना, शुद्ध चीज ही बोलना है, केवल भगवान के विषय में ही बोलना है, भगवत संबंधित कार्य ही करना है। ये कंटीमाला का प्रतीक है, इसको ताप कहा गया है। दूसरा क्या है भूल गए, पांच चीजें बोला था, पहला कौन सा था, ताप, दूसरा क्या है, पुंड्र तिलक, इसको ऊर्ध्व पुंड्र कहा जाता है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तिलक बोलते हैं ना, ये तो सरल भाषा है लेकिन इसका टेक्निकल नेम क्या है, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व पुंड्र। ऊर्ध्व का अर्थ है कि ऊपर जाने वाली, और पुंड्र का अर्थ है चिन्ह। दक्षिण भारत में जाएंगे दो प्रकार के मिलेंगे, ऊर्ध्व पुंड्र वाले मिलेंगे और अभी आजकल नया निकला है वो दोनों वाले मिलेंगे। ऐसे प्रचार करते जो क्रिश्चियन है वो कहते हैं आप परेशान हो, दक्षिण भारत ऐसे बोलते हैं, ऊपर है या आड़ा है हमारे पास आओ तो दोनों दे देंगे। क्या बोले। तो अस्तित्व में ऊर्ध्व पुंड्र का अर्थ है मेरा जीवन केवल आध्यात्मिक प्रगति के लिए है और किसी के लिए नहीं है। प्रगति मतलब ऊपर की ओर जाना, मेरा जीवन किसके लिए, केवल आध्यात्मिक प्रगति के लिए। माई लाइफ इज ओनली फॉर स्पिरिचुअलिटी। मुझे वो प्लान करना, ये प्लान करना, मुझे वो करना, ये करना है, मुझे वो इतना है करना, ये सब मैं अभी खत्म किया हूं, मुझे केवल आध्यात्मिक प्रगति करना है, मैं निश्चय कर चुका हूं। उस व्यक्ति को गुरु उस दिन तिलक लगाते हैं, क्योंकि 150 लोग बैठेंगे सबको लगाते जाएंगे तो शाम हो जाएगा, इसलिए आप पहले लगा के आते हैं। जैसे रामानुजाचार्य भगवान को भी लगा देते तिलक। देख इसलिए दिर्कुनुंकिट के विषय में कह रहा था, उधर भगवान को भगवान नहीं बोलते, तो शिष्य बोलते वैष्णव नंबी। जैसे दक्षिण भारत में भगवान को पेरुवाड़ बोलते हैं तमिल भाषा में, और शिष्य को नंबी बोलते हैं। नंबी का अर्थ है कि जो विश्वास करता है, यानी एक शिष्य गुरु के विश्वास करता है, इसलिए शिष्य को नंबी कहा जाता है। लेकिन उस जगह पे भगवान को नंबी कहा गया है, क्योंकि भगवान ने विश्वास किया ब्राह्मण के ऊपर, आप दीक्षा दो मुझे। तो ये पुंड्र, पुंड्र का अर्थ क्या है, तिलक। पुंड का अर्थ क्या है, मेरा जीवन केवल आध्यात्मिक प्रगति के लिए है और किसी के लिए नहीं है। और तीसरा चीज क्या दिया गया है, ये मजा आता है, ये अच्छा लगता है कि दीक्षा देने के अलावा प्रभु मेरा नाम बदली हो गया है। एक बार ऐसा हुआ, दीक्षा होने के बाद एक भक्त का नाम पड़ा यमराज दास। जब महाराज ने नाम बोला सब लोग हंसने लगे और बेचारा इसका मुंह इतना छोटा हो गया। अच्छे भक्त है लेकिन पता नहीं दिखाई नहीं पड़ते, दीक्षा लेने के इधर दिखाई नहीं पड़े, 8-10 साल पहले होता उनका दीक्षा, इसलिए नाले से भरा में रहते हैं लेकिन अभी संडे को दिखाई नहीं पड़ते। अरे मेरी यही प्रार्थना है, आज जो दीक्षा लेने उसमें कितने लोग अगले संडे को आएंगे, जो लोग आज दीक्षा लिए अगले संडे को दिखाई पड़ा मतलब वहां भी जीवित है, नहीं तो डेड, स्पिरिचुअल डेथ। जन्म होते ही मृत्यु होता है कुछ बच्चों का, तो इसलिए आज देखने के लिए आया हूं कितने लोग दीक्षा लिए, अगले संडे को आगे देखूंगा कौन कौन आए उनमें से। इसका मतलब जीवित है अभी भी। तो क्या बोल रहा था मैं? नाम तो यमराज दास के विषय कह रहा था। मैं समझ गया बेचारा, सब लोग हंस रहे और ये बाहर आते ही, तो मैंने थोड़ा सा साइड में लिया। प्रभु जी आप चिंता मत करो, यमराज जो है महाभागवत है। यमराज के दो स्वरूप होते हैं, एक तो विकराल स्वरूप होता है जो दुष्टों को पापियों को वो दंड देते हैं, और दूसरी जगह जो यमराज जो बहुत सुंदर शरीर है उनका, इतना हद तक कि नारद जी शिव जी सब लोग उनके दरबार में बैठते हैं और यमराज केवल 24 घंटा केवल भागवत पढ़ते और कुछ नहीं करते उधर। तो ऐसा है क्या प्रभु जी? तो बाद में प्रभु जी तो महाराज ने कौन सा यमराज के दाम दिया मुझे? ये अच्छे वाले यमराज ने उनके। तो महाराज एक बार दीक्षा देने से पहले मेरे कहा आज भी बोलेंगे आपको आज नया नाम दिया जाएगा, बाद में नाम मिलने का आप ये मत सोचो मेरा मुझे खराब नाम मिला दूसरों को अच्छा नाम मिला, सब भगवान के नाम है। इसके अंततः क्या है? दास। इसको दास नाम कहा जाता है। तीसरा चीज कौन सा है? दास नाम। मैं कौन हूं? मैं भगवान का दास हूं या भक्तों का दास हूं। अंततः ये इसको दास नाम बोला जाता है। जो नाम बड़े आज से आप मान लीजिए आज का नाम था आप आज तक आपका नाम था कुछ ओ भाई ये भाई बहुत सारे नाम होते हैं ना आजकल तो कुछ अजीब अजीब से नाम मिलते हैं, लेकिन अभी गुरु आके दीक्षा के दिन क्या करेंगे? आज से आप ये नहीं हो, आज से आप कौन हो? दास। तो ये दास नाम कहा जाता है, यानी आपका स्वरूप जीवेर स्वरूप है, यानी गुरु ने आपको अपना स्वरूप प्रदान किया। पहला क्या है? कंठी माला। उसके द्वारा क्या बताया? भौतिक जगत दुखाले और अशाश्वत है, और उसके अंदर सुख खोजने की प्रयास जो है आज से मैं नहीं करूंगा। दूसरा क्या है? तिलक कुंड का अर्थ क्या है? मेरा जीवन किसके लिए है और मैं हूं कौन? हुआ मैं कौन हूं? तीसरा क्या है? नाम। दास हूं, भगवान का दास हूं। अभी नाम तो दे दिया, आज से आपका नाम कमल लोचन दास लिखना। नाम तो बदली होगी लेकिन उसका साक्षात्कार हुआ? स्वरूप का साक्षात्कार हुआ? नहीं हुआ। इसलिए जिस जो गुरु ने जो आपको जो नाम दिया है ना, उस नाम का यानी उस स्वरूप का साक्षात्कार होने के लिए क्या देते हैं? चौथा चीज क्या है वो? मंत्र देते हैं। हम जो हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं ना, वो मंत्र क्या है? वो मंत्र किसके लिए है? हमारा स्वरूप का साक्षात्कार हो। इसे मंत्र जप करने के द्वारा हमारा स्वरूप का साक्षात्कार होना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूं, ये स्वाभाविक तरीके से होना चाहिए। इसलिए ये स्वरूप का या दास नाम का साक्षात्कार हो, इसलिए गुरु क्या करते हैं? हमको मंत्र देते हैं। हरे कृष्ण जप करेंगे, 16 माला जप करेंगे, इसलिए उस दिन प्रण लेते हैं कि 16 माला जप करो कम से कम हो, लेकिन 24 घंटा नहीं कर सकते हो। ये हमारी अवस्था इस प्रकार नहीं, हरिदास ठाकुर जैसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास इंद्रियां हैं, मन है, शक्ति है, ताकत है, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या करना चाहिए इन सब चीज के साथ? पांचवा चीज देते गुरु क्या है? याग। याग का अर्थ है कि भगवान की विग्रह की सेवा, भगवान की विग्रह देते हैं। गुरु प्रत्येक शिष्य को एक विग्रह देते हैं, बोलते हैं इस विग्रह का आप सेवा करो और इस सेवा की जिम्मेदारी को अपनाओ। ये संस्था होने के नाते गुरु जी क्या कहते हैं? सबको अलग अलग विग्रह नहीं देंगे, एक ही विग्रह सबको देंगे। जैसे प्रभुपाद जी का वीडियो दीक्षा की सेरेमनी देखेंगे, लेक्चर देखेंगे, ऋषि श्री श्री राधा पार्थसारथी राधा लंडनेश्वर, यानी दूसरे शब्दों में पांचवा चीज क्या है, कृष्णेर संसार करो छाड़े यानी अनाचार। संसार का अर्थ क्या है, देखभाल करना। भौतिक संसार जो अनाचार है, भौतिक संसार को अनाचार कहा गया, कृष्ण का संसार यानी कृष्ण का सेवा का जिम्मेदारी शिष्य को देते हैं, यानी इसका दीक्षा हो चुका है उनको जिम्मेदारी मिल चुका है। किसका जिम्मेदारी मिला है, भगवान की विग्रह की सेवा का जिम्मेदारी मिला है, सेवा के संबंध मंदिर का निर्माण का जिम्मेदारी मिला है, लेकिन हम ये अनुभव नहीं करते, पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं कि आज हमारा नया नाम मिला, नया जन्म मिला करके बस हो गया। ऑन द डे ऑफ इनिशिएशन यू आर गेटिंग अ रिस्पांसिबिलिटी, ए ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, विग्रह की सेवा करने की जिम्मेदारी उस दिन प्राप्त हो रहा है। इसलिए दीक्षा के दिन ही पांच चीजें प्राप्त होता है। सारे भक्त जिनका दीक्षा मिल चुका है या दीक्षा आज मिलने वाला है, सबको कम से कम ये तो याद रखना चाहिए कि आज के दिन हो क्या रहा है, कम से कम मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए मेरे जीवन में, इन सब का विचार करना चाहिए। हमें ही पंच संस्कार हो, इसको पंच संस्कार कहा गया है। तो आज कुछ लोगों का ब्राह्मण दीक्षा हो रहा है, दो तीन दिन से बहुत चल रहा था, हमने लिस्ट बनाया, महाराज मतलब कम करो, बहुत सारा आगे पीछे चल रहा था, लेकिन है कौन ब्राह्मण, हु इज द ब्राह्मण। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ना हम विप्रो न च नरपतिर ना भी वैश्यो नौ शूद्रो ना हम वर्णी गृहपतिर वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यम निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तु पदकमलयोर दास दासानुदास। चैतन्य और क्लियरली कहा, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। हमारी गौड़ीय वैष्णव धारा में ब्राह्मण दीक्षा पहले नहीं था, केवल हरे कृष्ण महामंत्री था। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने ब्राह्मण दीक्षा का प्रणाली शुरू किया है। क्यों किया, क्योंकि प्रचार, क्योंकि अगर ब्राह्मण कुछ चीज बोलता है समाज उसको स्वीकार करता है। एक वैदिक सभ्यता, एक वैदिक संस्था को हम प्रतिनिधित्व करते हैं एक समाज में, एक व्यवस्था को स्थापना करने के लिए ब्राह्मण दीक्षा का अनुष्ठान जो है वो आचार्यों ने किया है। भगवान की धाम में जाने के लिए आपको ब्राह्मण दीक्षा की जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र जप करते जाओ, आपको भगवत धाम जाओगे, आप कृष्ण प्रेम प्राप्त करोगे। तो इसलिए ब्राह्मण दीक्षा किसके लिए है, विग्रह की सेवा करना है, भगवान के लिए पकवाना है, तो क्या करना होगा, थोड़ा ब्राह्मण की एक डिग्री है। दूसरा प्रचार, इसलिए जो भक्त भगवान की विग्रह की सेवा में लगे हुए हैं और जो भक्त भगवान की विग्रह की सेवा का जिम्मेदारी अपनाना चाहते हैं, आप बोलो ये घर में कर रहे हैं, घर में नहीं, घर में आप ब्राह्मण बिना ब्राह्मण दीक्षा ही भगवान की सेवा कर सकते हो, विग्रह की सेवा, लेकिन मंदिर में आपको ये भोग लगाना है तो गायत्री मंत्र को उच्चारण करना है, इसलिए गायत्री दिया जाता है। इसलिए ये जो ब्राह्मण दीक्षा जो ले रहे हैं उनको ब्राह्मण के गुण उनके अंदर होना चाहिए। विग्रह की सेवा जो है वो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर ब्राह्मण के गुण हो। ब्राह्मण का गुण क्या है, समोधवस तपस्सौचम शांति नार्जम एवच ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण का गुण है समह दमह, वैसे ही भक्तों के अंदर ही पाया जाता है, लेकिन विशेष रूप में जिस भक्त के अंदर ये गुण पाया जाता है उनको ब्राह्मण दीक्षा दिया जाता है। मान लो कि वो गुण भी हैं अगर, लेकिन वो प्रचार नहीं कर रहे या विग्रह की सेवा नहीं कर रहे, उनको लेने की जरूरत नहीं, देंगे भी नहीं आपको, ये जरूरत नहीं करे मुझे नहीं मिला वो ये कुछ कम हुआ, नहीं, आपको हरे कृष्ण महामंत्र मिल गया वही सब कुछ है। लेकिन अगर कुछ विशेष कार्य जैसे विग्रह की सेवा, 98 में मेरा दीक्षा हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोगों को दीक्षा का रिकमेंडेशन दिया, ब्राह्मण दीक्षा का रिकमेंडेशन दिया। मैं स्वयं ब्राह्मण दीक्षा नहीं लिया था, 2004 की बात है तब ब्राह्मण दीक्षा लिया। तो महाराज ने पूछा, अभी तक तुम्हारा हुआ नहीं ब्राह्मण दीक्षा? मैंने बोला कि नहीं हुआ। क्यों? मैंने कहा ब्राह्मण का कार्य नहीं कर रहा था मैं टेम्पल कमांडर का कार्य कर रहा था, इधर से उधर भाग उधर भाग ही कर रहा था, मंदिर साफ कर रहा था, उसके लिए ब्राह्मण दीक्षा की क्या जरूरत है? अभी क्यों ले रहे हो? तो पुजारी ने कहा थोड़ा सा आपको आल्टर में आओ तो सब लोगों को उत्साह बढ़ेगा, आप भी आल्टर में आओ, इसलिए मैं ले रहा हूं। महाराज खुश हो गए। इसलिए जो ब्राह्मण दीक्षा लेना चाहते हैं ले रहे हैं, अस्तित्व में आपको क्या करना चाहिए? भगवान का भोग बनाना चाहिए माताओं को। जो पुरुष है उनको रोज आके भगवान के शिव विग्रह के जो बर्तन वो धोना चाहिए, रोज नहीं बोलते कम से कम हफ्ते में 2-3 दिन आना चाहिए, ड्रेसिंग सीखना चाहिए। क्या कहा क्या करना चाहिए? जाओ आपके इलाके में प्रचार करो, प्रवचन दो, लोगों को भक्त बनाओ। ये ब्राह्मण का कार्य है। यजन याजन पठन पाठन दान परिग्रह। यजन याजन यज्ञ करता है और कराता है, पठन पाठन शास्त्र को पढ़ता है। ये ब्राह्मण दीक्षा का जो पेपर है ना बहुत टफ है, मैंने देखा नहीं क्या क्या क्वेश्चन है उसके अंदर। लेकिन कोई भक्त है वो फोन किया, प्रभु इसका प्रश्न है जवाब क्या है, मतलब फोन में थोड़ी ना बताऊंगा मैं तो बाद में पूछता है प्रभु जी वो भक्त ने लिखा है उसको कॉपी कर दूं क्या? आज तुम पास हो गए, सच तो बोला कम से कम सत्य बोला। तो और एक भक्त पूछा, प्रभु जी मैं तो लिख दिया है, महाराज तो क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे ना? जन्माष्टमी जितना उत्साह से इधर उधर भाग भाग होता है ना, उससे ज्यादा दीक्षा के टाइम में होता है। लेकिन बाद में अचानक एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है क्या हो गया, खत्म हो गया। आपके साथ कितने लोग दीक्षा लिए थे? दिखते हैं कोई इसमें? देखिए ब्रह्मांड नहीं, कम से कम जो आज ले रहे हैं, प्लीज मेरा निवेदन ये है, आपका आज का जितना उत्साह है ना वो रोज के रोज बढ़ते रहना चाहिए, मेरा आशीर्वाद है, स्वीकार करो। जल्दी आशीर्वाद देने की योग्यता नहीं है, प्रार्थना ही करता हूं, लेकिन फिर भी कितना सालों से इतने सालों से दीक्षा का समारोह को देख के मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जो दीक्षा ले रहे भक्त उनके अंदर जो तीव्रता है वो भक्ति का तीव्रता क्यों कम हो जाता है, क्यों हो रहा है? तो मत कीजिए, यही मेरे निवेदन है, तीव्रता को बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए। साई का शब्द का अर्थ मालूम है आपको? उनसे पूछिए बताएंगे, उनको ही नहीं मालूम है। सच में वो साई है। अगर सुन लिया तो फिर मारने के लिए आएंगे। तो एक व्यक्ति ने आके पूछा, प्रभु जी साईं बाबा हमारे गुरु है। सच में वो आपके निश्चित रूप में आपके गुरु है। तो एकदम ये हो गया, बताइए। मैं पूछा आपको साई का अर्थ क्या है? साई शब्द का अर्थ है संस्कृत भाषा में टॉलरेंट, सहनशील, कम से कम आपके गुरु को इतना तो आदर दीजिए ताकि वो आपको सहन ना करना पड़े। है वो सहनशील, ये उस सहनशील आप परीक्षा मत लेना। हमारा ऐसा कार्य होना चाहिए ताकि उनकी सहनशीलता की परीक्षा ना हो। तो सच में चाहे साईं बाबा कितने सहनशील है देखिए, और हर एक शिष्य उनका परीक्षा लेता है। तो मेरा यही निवेदन है, आपके जो गुरु हैं उनका सहनशीलता का परीक्षा मत लीजिएगा। यानी पहले से शिष्य को ऐसा समर्पित होना चाहिए, इतने आपका भरोसा होना चाहिए गुरु का आपके ऊपर, सच में निश्चित रूप में ये शिष्य जो है बहुत अच्छा है, इसके ऊपर मैं विश्वास कर सकता हूं। इधर गुरु के ऊपर विश्वास की बात नहीं चल रही है, दीक्षा के दिन किसकी बात चल रही है? हमारा ऐसा आचरण होना चाहिए ताकि गुरु क्या करे, हमारे ऊपर विश्वास करे। असल में दीक्षा के दिन ये है, शिष्य जो है समर्पण करता है और गुरु क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन उल्टा सोचते हैं हम लोग, क्या करेंगे, आज मैं गुरु की ओर विश्वास कर रहा हूं और गुरु क्या कर रहे हैं, समर्पित कर रहे होंगे। तीसरे बहुत फिलोसॉफिकल रही है, दार्शनिक रही है, भगवान ने बुद्धि दिया है, ब्रेन दिया है, शास्त्र दिया है, गुरु दिया है, साधु दिया है, अर्थविग्रह दिया, इतने सारे चीजें दिया, उसका पूर्ण फायदा लीजिएगा। तो आज का दीक्षा का समारोह में जो भी इधर बैठे हैं, कुछ लोग तो जो दीक्षा लेने वाले हैं वो इंतजार कर रहे कब दीक्षा मिलेगा, कब कृपा मिलेगा गुरु जी का। असल में गुरु का जो कृपा है उनकी वाणी है, उनके द्वारा उत्पन्न हुआ ज्ञान है। तो इसलिए जो लोग इस प्रवचन को सुने नहीं है और आपके मित्र है कोई संबंध में है जो दीक्षा ले रहे, उनको जाके थोड़ा सा सुनाइए और उसको बोलिए कि थोड़ा सा सीरियस रहे, गंभीर रहे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न?
हाँ,
उनका प्रश्न यह है कि भक्ति के दो संतान ज्ञान और वैराग्य है। दीक्षा लेने से पहले भी भक्ति किया कि नहीं आपने? उसको पुरश्चर्य कहा जाता है। तो वो भक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप करना, शास्त्र पढ़ने के द्वारा आपको ज्ञान और वैराग्य प्रकट हुआ। ये प्रकट होने के बाद आप आज कमिटमेंट देते हो, उसके बाद भी वही करोगे। दीक्षा के पहले जो मंत्र जप किया वही मंत्र बाद में जप करोगे ना? अंतर क्या है? पहले था वो विदाउट कमिटमेंट, अभी क्या था वो विद कमिटमेंट। पहले स्वेच्छा से अपने मर्जी से, बाद में दीक्षा होने के बाद बंधन में। जैसे एक लड़का है, लड़की से बातचीत होता है, प्रेम चल रहा है, और लड़की बोलती है कि अभी बहुत हो गया, अभी विवाह तो करें। तो कहा क्या जरूरत है, ऐसा बोलता है तो लड़की को चले जाना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसका जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। तो इसलिए दीक्षा एक जिम्मेदारी है। पहले भी आपने भगवान की भक्ति किया, लेकिन वो भक्ति जो है, मान लो कि आपने रोज सोलह माला किया, एक दो दिन नहीं किया, या कुछ नियमों में कुछ इधर उधर किया, तो इतना पाप नहीं है जितना दीक्षा के बाद करोगे। तो इसलिए पहले गुरु या भगवान आपके ऊपर इतना भरोसा नहीं करेंगे जितना दीक्षा के बाद। तो दीक्षा के पहले भी भक्ति किया आपने, लेकिन वो भक्ति के द्वारा जैसे ज्ञान और वैराग्य हृदय प्रकट हुआ, जैसे सनातन गोस्वामी पाद चित्रे महाप्रभु का शरण लेने से पहले उन्होंने क्या किया, अपने घर में ब्राह्मणों को बुलाया, भागवत पढ़ा, इसको पुरश्चर्य कहा जाता है। इससे जो न्यू भक्ति रूप में हमारे आश्रम में ज्वाइन करते हैं, कांग्रेगेशन डिवोटी काउंसलिंग सिस्टम में जो ज्वाइन करते हैं, तो उनके ऊपर जो बताते हैं उसको पुरश्चर्य कहा जाता है। और जिनका पुरश्चर्य उतना जितना अच्छा है उतना उनका जमीन सारवान हुआ, हृदय सारवान हुआ, उनके और दीक्षा का जो प्रभाव है वो, इसलिए पुरश्चर्य बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ ने कहा तो दीक्षा ले लेंगे ना तो बंधन में आ जाएगा तो अच्छा भक्ति होगा, गलत बात है। जैसे ये कहना कि लाइसेंस लेने के बाद मैं गाड़ी सीखूंगा, ड्राइविंग सीखूंगा, अरे आप ड्राइविंग सीखो, अच्छा ड्राइविंग करोगे तो आपने आप लाइसेंस मिल जाएगा आपको। नहीं, लाइसेंस मिलेगा ना तब सीखेगा, ये क्या है? नहीं, इससे पुरस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोग पूछते हैं प्रभु जी ऐसा क्यों है कि दो साल एक साल हमको पूरा वेट करना पड़ता है, अन्य संस्था में जाइए भागवत कथा हुआ है, राम कथा हुआ, हजारों लोग बैठेंगे, लास्ट दिन जो दीक्षा मिल जाता है। श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। तो ऐसा क्यों है? बाहर के लोग ऐसा करते हैं, एक ही बार आए तो हजारों लोगों को ऐसा दिखा देते आप ले लो दीक्षा, क्यों? क्योंकि हमारी संस्था जो है बहुत पवित्र संस्था है। श्री प्रभुपाद ने नियम बनाया, जैसे सनातन गोस्वामी ने पुरस्कार किया, दीक्षा लेने से पहले देखा जाता है कितना कठोरता से नियम पालन किया, उसके ऊपर आधारित होकर आपको रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, अभी महाराज आए, दीक्षा का समारोह होगा, सही वैष्णव से निवेदन है कि दीक्षा जहां हो रहा है उधर सब लोग आए, जिनका दीक्षा हो रहा है उन सबको आप आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वैष्णव के सामने जो भी कार्य होता है वो शुभ माना जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।